सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं साहुवच्छायिरिये अरहन्ते वन्द्यूणसिद्धेवी जे पञ्चलोगवाले वोच्छं बन्धस्य सामित्तम्। यह श्री वीर सेनाचार्य रचित धौला टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य, जिन्होंने श्री धर्सेन आचार्य के उपदेश के अनुसार इसकी रचना की है, जो उपदेश हमें मूल में भगवान महावीर के द्वारा प्राप्त हुआ है। आठवीं पुस्तक में ये जो तृतीय खंड है, बंध स्वामित्व विचय, उसमें हम पृष्ठ संख्या 99 पर आ गए। 99 सूत्र नंबर 45, 98 पर पृष्ठ पर हमने कुछ प्रकृतियों के नाम देखे थे। कितने वो 25 प्रकृतियां जो दूसरे गुणस्थान में विच्छित होती है, उनके बारे में चल रही बात, परंतु उनमें से नरक गति संबंधी चल रहे हैं। नरक गति के जीवों के वो उसमें कौन से गुणस्थान क्या क्या होते हैं, उसकी चर्चा चल रही है। तो उसका बंध स्वामित्व आदि बताया था। अब जो प्रश्न पहले प्रश्न उठता है कि उदय पहले विच्छित्ति होती है कि बंध की विच्छित्ति होती है, तो उसमें स्थान वृद्धि निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला का नरक गति में उदय ही नहीं होता है, परंतु वहाँ बंध चल रहा है। पहले दूसरे गुणस्थान में तो बंध होगा, दूसरे में विच्छित्ति होने पर आगे बंध नहीं होगा, उदय नहीं होते हुए भी। इसलिए उदय पहले विच्छित्ति होती है कि बंध विच्छित्ति होती है, ये सवाल पैदा नहीं होता। उसी प्रकार स्त्रीवेद का भी उदय नहीं है, तीर्यकायु का उदय नहीं है, तीर्य गति का उदय नहीं है, गत्यानुपूर्वी का नहीं है, चार संस्थान का नहीं है, चार सहनन का आदि का वहाँ उदय ही नहीं है। ये बात हमने कल भी पढ़ी थी। अन्य जो है ये 99 पृष्ठ पर सेकंड लाइन में, ये अप्रशस्त विहाय गति दुर्भग दुस्वर अनादेय और नीच गोत्र का पहले बंध विच्छिन्न होता है पश्चात उदय, क्योंकि नारकियों के तो इसी का उदय चलता है, उनमें तो शुभ प्रकृतियों का बंध है ही नहीं है, इसलिए ये उदय नहीं है, बंध की बात नहीं, उदय नहीं है, बंध तो हो सकता है। अब उसके आगे के पैराग्राफ में जहां हमने तीन लाइन पढ़ी थी, फिर दोबारा पढ़ रहे हैं। अप्रशस्त विहाय गति दुस्वर और अनंतानुबंधी चतुष्क का, अब प्रश्न है स्वोदय से बनती है क्या परोदय से बनती है, तो उसमें स्वोदय परोदय से बंध होता है, क्योंकि ये अध्रुव उदयी प्रकृतियां हैं। अध्रुव बंधी नहीं कहा, अनंतानुबंधी तो ध्रुव बंधी है, परंतु उदय में अध्रुव है, जैसे कभी क्रोध का, कभी मान का, कभी माया का उदय होता है, परंतु बंध तो सबका होता है। तो उसमें कहा स्वोदय से भी बंध होता है, क्रोध का बंध क्रोध के उदय में भी हो सकता है, होता ही नहीं, होता ही है, और क्रोध का बंध लोभ के या मान के या माया के उदय में भी होता है। अन्य ये जो दो है, अप्रशस्त विहाय गति और दूसवर का, सासादन गुणस्थान में स्वोदय से ही बंध होता है। इसका भी कारण हमने देखा था कि जब अपर्याप्त अवस्था है या विग्रह गति की बात है, तो वहां इनका उदय नहीं है, अप्रशस्त विहाय गति का भी नहीं है और स्वर नाम कर्म का भी होता है नहीं है, यानी दुस्वर का भी नहीं है, तो वहां उनका उदय नहीं होते हुए भी बंद होता है, उस अपेक्षा से उसको परोदय से बंद कहने में आता है। पर्याप्ति, जब शरीर पर्याप्ति पूरी होती है तो परघात कहे प्रशस्त विहाय गति का उदय शुरू होगा, और भाषा पर्याप्ति पूर्ण होने पर दुस्वर का उदय शुरू होगा, तो वहां पर उसको कहेंगे वो स्वोदय से बंद होता है। वहाँ स्वोदय की अपेक्षा प्रशस्त विहार गति के उदय में और प्रशस्त बंती ऐसा नहीं लेना, क्योंकि नारकियों में प्रशस्त विहार गति का उदय ही नहीं पाया जाता। उनके तो एकमात्र अप्रशस्त विहार गति ही होती है, दुस्वर ही होता है उदय में, इसलिए कहेंगे उसका बंद स्वोदय में होता है। अब यहां से पढ़ेंगे, यहां तक तो हमने कल पढ़ा था स्त्री वेद, वो कॉमा देने के बदले वो द के नीचे खोड़ा लगाए, वो नहीं चाहिए। स्त्री वेद, तिर्यक आयु, तिर्यक गति, चार संस्थान, चार सहनन, तिर्यक गति प्रायज्ञानुपूर्वी, उद्योत और स्त्यानुवृद्धि त्रय, इनका परोदय से ही बंद होता है। हमने देखा था इनका उदय ही नहीं होता नर गति में, फिर भी हमने देखा पहले और दूसरे गुणस्थान वाले इसका बंद करते हैं, दूसरे गुणस्थान में उसकी विच्छित्ति होती है। तो इनका जो बंद हो रहा है वो इन प्रकृतियों के उदय के अभाव में ही हो रहा है, क्योंकि नारकियों के तो नरकायु का उदय चल रहा है, नरक गति का उदय चल रहा है, फिर भी बंद ये तिर्यक का हो सकता है ना, तिर्यक गति तिर्यक आयु अगर, तो परोदय से ही बनते हैं ऐसा यहाँ कहा, क्योंकि यहाँ इनके उदय का अभाव है। ये नरक गति की बात चल रही है इसलिए यहाँ लिखा, क्योंकि अभी हम मार्गणाओं का अभ्यास कर रहे हैं, अलग अलग गतियों में वो अलग अलग उदय कौन से होते हैं, बंद कौन से होते हैं, उसकी चर्चा आप करेंगे। दुर्भग अनादेय और निज गोत्र का स्वोदय से ही बंद होता है, क्योंकि नारकियों के तो इनका ही उदय पाया जाता है, क्योंकि नारकियों में इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियों के उदय का अभाव है, अशुभ प्रकृतियों का ही उदय है, बंधने में शुभ अशुभ दोनों प्रकार की कोई भी बन सकते हैं। अब आगे ये निरंतर है के शांतर है उसकी चर्चा चलेगी अभी। स्त्यान वृद्धि आदि तीन और अनंतानुबंधी चतुष्क का निरंतर बंद होता है। देखो दूसरे गुणस्थान में बंद विच्छित्ति होती है, तब तक इन्हें पहले में और दूसरे में दोनों में ये तो निरंतर बनती है, क्योंकि ये ध्रुवबंधी प्रकृतियां हैं, हमने देखा था इनकी लिस्ट। स्त्री वेद चार संस्थान कौमा चार सहनन उद्योत अप्रशस्त विहार गति दुर्भग दुस्वर और अनादेय, इनका सांतर बंद होता है। इनको सांतर क्यों कहा है, ख्याल आता है कुछ? हाँ मयंक भाई, हाँ बहुत अच्छा। इनके प्रतिपक्ष का भी बंद होता है, उदय भले नहीं हुए उनका, परंतु यहाँ प्रतिपक्ष का भी बंद है, तो प्रतिपक्ष का बंद शुरू होता है तो इसमें अंतर पड़ जाता है, गैप पड़ जाती है, इसलिए इसको कहा ये सांतर बंद है, क्योंकि इनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियों का बंद संभव है। तिर्यक आयु का निरंतर बंद होता है क्योंकि प्रतिपक्ष के अभी आयु के बंध में प्रतिपक्ष नहीं लगाना। तिर्यक गति में तो प्रतिपक्ष हो सकता है, क्योंकि नारकी या तो मनुष्य गति बांधेंगे या देव तिर्यंश गति बांधेंगे, तो वहां तो उसके लिए तो तिर्यंश गति और गत्यानुपूर्वी के लिए तो प्रतिपक्ष कहा, परंतु जो आयु बनती है तो वही बनती है। तिर्यंच आयु बनते बनते मनुष्य आयु बनना शुरू हुआ इसलिए ये रुक गई, ऐसा कभी होता ही नहीं है। आयु तो जो एक ही बनती है, और बनती है तो बनती है अंतर्मूर्त तक, बाद में नहीं बनती, रुक जाती है। इसलिए यहाँ कहा क्योंकि निरंतर बंदी प्रकृतियों में हमने आयु को भी गिनाया था, निरंतर में और ध्रुवबंदी नहीं, तो तिर्यक आयु का निरंतर बंद होता है क्योंकि प्रतिपक्ष प्रकृति के बंध के बिना इसके बंध की विश्रांति पाई जाती है, यानी बंध रुक जाता है। दूसरी प्रकृति का बंध शुरू हुआ इसलिए ये रुक गया, ऐसा नहीं है। आयु का बंध शुरू होता है अंतर्मूर्त तक बनती है और बस रुक जाता है, वहां इसकी कोई अन्य प्रतिपक्ष प्रकृति बन रही है ऐसी बात नहीं है। इसको प्रतिपक्ष प्रकृति कही ही नहीं, आयु उनको उसमें नहीं गिनाते। हाँ अंतर्मूर्त आदि, हाँ तो आदि में लिया ना उसको, अंतर्मूर्त या ज्यादा, इस तरह आदि में अंतर्मूर्त रखा। तिर्यक गति प्रायज्ञानपूर्वी और निज गोत्र का सांतर निरंतर बंध होता है। ये सांतर कब कहेंगे? जहां प्रतिपक्ष पाया जाएगा वहां सांतर कहेंगे। अभी तीसरे चौथे गुणस्थान वाले किसका बंध करेंगे? मनुष्य गति का ही करेंगे। यहां तिर्यंच गति की बात चल रही है, फिर भी तिर्यंच गति का ही बंध करे ऐसे कोई है नार के? सातवें नरक के। हाँ, देखो यहाँ कहते, अब कहते क्योंकि छह पृथ्वियों में इनका सांतर बंध होकर, वो बिंदी त के बजाय सा के ऊपर लगाना, सांतर करना उसको। यानी छह पृथ्वियों में तो प्रतिपक्ष वहां है, क्योंकि पहले और दूसरे गुण स्थान तक ही बनती है, तो उसमें हमको सांतर निरंतर लगाना है। तो पहले और दूसरे गुण स्थान वाले सातवें नरक के नारके तो निरंतर इसका ही बंद कर रहे हैं, बंद होकर सातवीं पृथ्वी में निरंतर रूप से ही बंद देखा जाता है। वहां तो एकमात्र वो तिर्यंच गति का ही बंद हो रहा है। शंका, यदि प्रतिपक्ष प्रकृति के बंध का आश्रय करके बंध विश्रांति को प्राप्त होने वाली प्रकृति सांतर बंध प्रकृति कही जाती है, तो देखो क्या कहा, शंकाकार का ऐसा शंका है, ऐसी शंका है कि दूसरी प्रतिपक्ष वाली का बंध शुरू हुआ, इसलिए यदि बंध विश्रांत होना है ने बंध रुक जाता है, ऐसी यदि प्रकृति हो उसको अगर हम सांतरबंधी प्रकृति कहेंगे, ऐसी अगर डेफिनेशन करेंगे, तो उद्योत की प्रतिपक्षभूत अनुद्योत स्वरूप प्रकृति का अभाव होने से अनुद्योत नाम की कोई प्रकृति है नहीं है, उद्योत नाम की प्रकृति है उसके लिए कोई प्रतिपक्ष है नहीं है। उद्योत बंधेगी तो बंधेगी, नहीं तो नहीं बंधेगी। और वो ऐसे भी नहीं कि अंतर्मुहूर्त तक बंधना ही चाहिए, जैसे आयु है कम से कम अंतर्मुहूर्त बंधेगी, आहारक द्विक कम से कम अंतर्मुहूर्त बंधेगी, तीर्थंकर कम से कम अंतर्मुहूर्त बंधेगी, वैसे उद्योत के लिए तो ऐसा कुछ है ही नहीं। इसलिए इनका प्रश्न क्या है कि दूसरी प्रकृति का अभाव होने से उद्योत को निरंतर बंधी प्रकृति होना चाहिए, चाहिए नहीं इसकी अभी कल्पना है, अथवा बंध का विनाश है इस कारण से यदि सांतरता कही जाती है, क्या ना सांतर बंध यदि बंध होता नहीं इसलिए सांतर कहते हो, क्योंकि बंध में अंतर पड़ गया, यदि वो कारण है तो फिर तीर्थंकर आहार अग्निक और आयु कर्मों को भी सांतरता का प्रसंग आता है। ये क्रॉसिंग चल रहे अभी, ये जो आहार अग्निक तीर्थंकर आदि जो है वो भी बंधेगी तो बंधेगी या रुक जाती है, फिर भी उसको निरंतर बंदी कहा। और उद्योत, उद्योत में भी ऐसा है, बनती है और रुक जाती है, फिर भी उसको वो निरंतर नहीं कहा है। उनको तो निरंतर कहा था, तीर्थंकर आहारक द्विक को निरंतर बंदी प्रकृति कहा था, उद्योत को वैसा नहीं कहा है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई प्रतिपक्ष वाली है, जो गति कर्म है वो प्रतिपक्ष वाला है, कोई गति में से एक गति बनती है तो उसको हम कहेंगे अन्य विपक्ष, यानी प्रतिपक्ष का बंध शुरू हुआ इसलिए मान लेते कि तिर्यंच गति का बंध रुक गया है, इसलिए उसको सांतर बंधी कहा। तो उद्योत के बारे में दोनों तरफ से ये फिट नहीं बैठता है, क्योंकि वो अप्रतिपक्ष वाली है और फिर भी आप उसको सांतर बंधी कहते हो, ऐसा क्यों? ये बड़ा लंबा प्रश्न ही समझ में आवे ना तो अभी उस समाधान पढ़ेंगे अभी। यहाँ पूर्वोक्त शंका का परिहार कहते हैं, प्रतिपक्ष पति हुआ, प्रतिपक्ष प्रकृति के बंध का आश्रय करके बंध विश्रांति को प्राप्त होने वाली प्रकृति सांतरबंधी है, इस प्रकार जो कहा है वह सांतरबंधी प्रकृतियों में प्रतिपक्ष प्रकृति के बंध के अविनाभाव को देखकर कहा है। यानी जहां जहां प्रतिपक्ष का बंध पाया जाता है उसको देखकर उनको सांतरबंधी कहा है, जिनकी प्रतिपक्ष प्रकृतियां हैं और प्रतिपक्ष प्रकृति के कारण के इनका बंध रुक जाता है, उन प्रकृतियों को सांतरबंदी कहा। वह सांतरबंदी प्रकृतियों में प्रतिपक्ष प्रकृति के बंध, सॉरी हाँ नीचे का, वास्तव में तो नीचे की लाइन, वास्तव में तो एक समय बंद कर द्वितीय समय में जिस प्रकृति की बंद विश्रांति देखी जाती है वह सांतरबंदी प्रकृति है। ये वास्तव में क्या है, वहां तो ये प्रतिपक्ष के कारण उनको कहा। सच देखा जाए तो यानी वो अंतर्मूर्त की लिमिट नहीं रखना, एक समय में बंदी दूसरे समय बंद है ही नहीं है। अब जो प्रतिपक्ष वाली है वो दूसरे समय में दूसरी प्रकृति बनती इसलिए रुक गया है, जिनको प्रतिपक्ष ही नहीं है वे तो बनती है या रुक जाती है, उसके लिए अंतर्मूर्त की लिमिट नहीं है। देखो ये जो है ना प्रतिपक्ष वाली, तो हमने वो 51 प्रकृति नाम कर्म की गिनी थी और बाकी भी 11 इसकी गिनी थी ना सबकी, साता या असाता, उच्च या नीच गोत्र और मोनी की 7 गिनी थी, हास्यरति या शोकरति, और 3 वेद में से ये 11 तो अन्य 3 की हुई और 51 हमने नाम कर्म की गिनी थी। ये सारी प्रतिपक्ष वाली प्रकृतियां हैं। जो अप्रतिपक्ष वाली है ऐसी प्रकृतियां कौन सी है, परंतु जो निरंतर नहीं बन यानी ध्रुव नहीं बनती है, ये अध्रुव बंदी में 2 भाग की है। देखो सबसे पहले हमने वो 47 ध्रुव बंदी देखी थी, बंधने वाली प्रकृति 120 है, क्योंकि 2 प्रकृतियों का तो बंध नहीं होता। कौन से 2 का? हाँ सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का। 148 के बदले हम 122 का हिसाब लगाते हैं ना, क्योंकि वो बंधन और संघात हम शरीर प्रकृति में ही सम्मिलित कर देते हैं, और स्पर्श रसगंध वर्ण की 20 के बजाय हम 4 ही गिनते हैं, इसलिए 148 भेद नहीं करके हम 122 ही करेंगे। उसमें से भी 2 बंधने वाली नहीं है, बंधने वाली 120 है, इसमें से 47 है वो ध्रुव बंदी है, यानी वो ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, अंतराय की 5, मोहनीय की मिथ्या तो 16 कषाय भय जुगुप्सा, और रिमेनिंग में वो 19, 38 हो गई तेजस कारमान वर्ण रस गंध स्पर्श अगुरु लघु उपघात और निर्माण, ये 47 प्रकृतियां ध्रुव बंदी है। अब अध्रुव बंदी यानी जो ध्रुव बंदी नहीं है ऐसी कितनी रही अभी, इसमें से 47 माइनस करेंगे 73 रहे ना, कितने रहे? 73 रहे। अब 73 में से 11 अप्रतिपक्ष भूत है, तो रिमेनिंग कितने रहे अभी? 62 प्रतिपक्ष वाली है। ये 11 अप्रतिपक्ष वाली कौन सी है? तो तीर्थंकर है, आहारक द्विक है, 4 आयु है, आतप है, उद्योत है, परघात है और उच्छ्वास है। ये 11 प्रकृतियां निर्माण नहीं लिया, वो ध्रुव बंदी है ना, निर्माण को प्रतिपक्ष नहीं है परंतु वो ध्रुव बंदी में लिया। अध्रुव में अभी हम ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ध्रुव बंदी में 47 लिए। जो ध्रुव बंदी नहीं है ऐसी प्रकृतियां कौन सी है? तो ये 73 है। 73 में से 11 है वो अप्रतिपक्ष वाली है, जिनके प्रतिपक्ष प्रकृति नहीं है, उसमें से 11 में अभी हमने गिने ना तीर्थंकर आराग द्विक आयु वगैरह। अभी इसमें 11 में भी 2 भेद करना है, उसमें जो परघात उच्छ्वास आतप और उद्योत ये 4 है वो निरंतर बंदी नहीं है, सांतर बंदी है, एक बंद होगा तो होगा नहीं तो रुक जाएगा, और इसमें से जो 7 है वो निरंतर बंदी है, वो 7 में एक तीर्थंकर, आहारक द्विक और 4 आयु, यानी इनका बंद शुरू होगा तो अंतर्मूर्त तो होगा ही होगा। ये जो 4 है उनके प्रतिपक्ष नहीं है फिर भी सांतर है, आतप उद्योत परघात और उच्छ्वास, बंद होगा तो होगा या तो नहीं होगा, उसके लिए उनको कोई प्रतिपक्ष है इसलिए बंद रुका, ऐसी बात नहीं है। देखो 11 जो है वो अप्रतिपक्ष है, 11 में से 7 है वो निरंतर बंदी है, 4 में परघात, उच्छ्वास, आतप और उद्योत, ये कहीं टेबल पर यहाँ नहीं मिलेगा इसमें। आतप और उद्योत
ये सभी एक समय ही बनती है, ये चारों
समय। हाँ, बनती है ना, अधिक समय में भी बन सकती है, 4 समय बंदी, 10 समय बंदी, परंतु एक ही समय में बनकर रुक सकती है, एक ही समय में बनती है। हाँ, वन और मोर, मोर यानी वो एक समय में भी रुक सकती है, भले अंतर्मूर्त बंदे उसकी कोई ना नहीं है, परंतु वो नियम नहीं उसके लिए। जैसे तीर्थंकर प्रकृति के लिए नियम है अंतर्मूर्त तो बंधेगी ही, उससे कम नहीं बंधेगी, आयु 2-4 समय बंधी और रुक गई ऐसा नहीं है। तो ये अप्रतिपक्ष होते हुए भी 7 प्रकृति जो है वो निरंतर बंधी है और 4 है वो सांतर है, उनके प्रतिपक्ष नहीं है, फिर भी उनका बंध ऐसे रुक जाता है, बंदी तो बंदी, नहीं तो नहीं बंदी। अब ये जो 62 है, 62 में 51 तो नाम कर्म की है और 11 है वो अन्य, अभी हमने जो गिनाई थी मोनी की 7, 2 युगल और 3 वेद, 7 वेदनी की 2 और गोत्र की 2, ये प्रतिपक्ष भूत है। फिर अन्य की और नाम कर्म की हमने यहाँ 51, इसमें एक समय वाली एक भी नहीं है, ये प्रतिपक्ष वाली है सब,
रुक जाता है तो
वो एक समय में भले हो परंतु वो प्रतिपक्ष के कारण रुकी है। एक समय हो सकता है, हो सकता है रुक क्यों गई फिर, प्रतिपक्ष के कारण।
ये अगर एक समय की है और उसका प्रतिपक्ष अगर रुक जाता है तो वो सांतर हो जाएगी फिर,
तो ये सारी सांतर है, ये प्रतिपक्ष के कारण सांतर है, ये सारी प्रकृतियां सांतर बंदी है। जैसे वेदनी में 7 वेदनी है या 7 वेदनी है,
अगर उनका प्रतिपक्ष रुक जाता है
तो ये बंधेगी 7,
तो
हाँ निरंतर होगी, फिर बाद में जिस गुणस्थान में बंध विच्छित होती है, जैसे वेदनी के 7 या 7 बनती है, कहाँ तक 7 या 7 बनती है, 6 तक, तो 7वें के बाद वो 7 प्रकृति निरंतर बंदी हो गई 7वें गुणस्थान के आगे, क्योंकि अभी उसका प्रतिपक्ष नहीं रहा, प्रतिपक्ष की बंदे विच्छित्ति हो जाएगी, उसके बाद वो निरंतर बंदी हो जाएगी। 7 में, अच्छा इन 7 में तीर्थंकर, आहारद्विक और 4 आयु, बराबर ना। अभी 51 है वो नाम कर्म की है, वो हमने गिना ही थे, दो बातों की नहीं थी, गति है जाति है ऐसे नहीं, 4 गति में से कोई एक गति बंधेगी, 5 जाति में से कोई होगी। देखो वेदनी की 2, गोत्र की 2, ये कौन सी हमको पता चलता है, और मोनी की 7, 7 में तो 2 युगल है, हास्यरति या शोकरति, और 3 वेद में से 1 वेद, तो पहले गुणस्थान में हम कहेंगे 3 में से 1 वेद, दूसरे गुणस्थान में कहेंगे 2 में से 1 वेद, और बाद में पुरुष वेद निरंतर बंदी कहेंगे। ये थोड़ा कन्फ्यूजन थोड़ा दूर हो जाए ना, पहले मैंने ये बात नहीं उठाई थी, अभी थोड़ा हम बार बार पढ़े तो थोड़ा यूज्ड हो जाते हैं, तो अभी ये बात समझ में आ सकेगी, ऐसी है। ये तो टेबल तो सब आपके पास रहेंगे, मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। पहले मुझे किसी ने पूछा था ये नोट्स किधर है, मतलब मेरे में तो नहीं, हमारे डॉक्टर साहब पहले आते थे ना कर्मकांड वगैरह सीखने, वे बनाते सारे चार्ट्स टेबल सब, मेरे पुस्तक में तो कुछ नहीं था लिखा हुआ, हाँ इनके पास है सब। और वो पढ़ाती हो तब मुझे सूझता है, पहले ऐसा कुछ सूझता नहीं, ऐसे बना के नहीं रखती मैं, तो ये आपकी ही देन है, आपके निमित्त से सूझा ना। देखो हाँ 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 तो नहीं करता तो ये पुद्गल अपने आप हो रहा है, आपके भीतर से नहीं हो रहा है। हाँ देखो ये हम फिर पढ़ते इसको, वास्तव में समाधान में चौथी लाइन, वास्तव में एक समय बनकर द्वितीय समय में जिस प्रकृति की बंद विश्रांति देखी जाती है वह सांतर बंद प्रकृति है। अब ये जो हमने 62 प्रकृतियां देखी उनका भी एक समय बंद रुक जाता है, और ये जो चार है प्रघात उच्छ्वास सातप उद्योग इनका भी एक समय में रुक जाता है, इसलिए सांतर तो कहा, फिर भी ये बिना प्रतिपक्ष वाली सांतर है और ये प्रतिपक्ष के कारण सांतर है, ये उसमें डिफरेंस। प्रत्येक हाँ बदलते रहते, एक समय की उसकी है ना, उसके लिए अंतर्मुहूर्त की लिमिट नहीं है, इतना ही बताना है, परिणाम तो बदलते रहते ना, ये तो हमारे ज्ञान में नहीं आते, परिणाम तो बदलते रहते। हाँ नहीं होता है अन्य प्रकृति का, अभी नरक गति बांधते बांधते बीच में ही छूट गए, तिरंज गति बांधना शुरू हो गए, होगा ना ऐसा।
देखो आपका जो कहना है कि प्रत्येक समय में भी मतलब ऐसा फरफार होता है, तो बहुत लोग कहते हैं कि कौन से परिणाम करेंगे तो ज्ञान आवरण कर्म नहीं बंधेगा, कौन से परिणाम करेंगे तो मिथ्यात्व नहीं बंधेगा वगैरह, जो कुछ उनके प्रश्न है, तो ये कहाँ पिन पॉइंट करेंगे हम एक एक। हाँ साहब फर्क पड़ेगा पर वो नहीं हो रहा है ना। हाँ तो इसीलिए पूछ रहे कि भाई ज्ञान आवरण कर्म नहीं बांधेंगे तो क्या होगा। ये तो मोहनी के आपने बात बता दी, दर्शन मोहनी की, यानी ये विविधता जीवों के परिणामों की एज वेल एज कर्मों की भी जो अवस्थाएं बदलती है वो कितने झटापट बदलती है, और उसमें हम अपना काम करने को जाओ मतलब उसका भी करो और अपना भी करो, ऐसा नहीं हो सके कि कर्म को भी बांधे और अपने परिणामों के करे, द्विक्रियावादी हो गया वो।
और ये शुद्धोपयोग और शुभोपयोग ये तो द्रव्यानियोग की भाषा है, कर्णानियोग तो कितना राग विद्यमान है उतना बंध है, ऐसा देखे ना, क्योंकि बंध तो राग से हो रहा है मिथ्या तो से, ये प्रत्यय है उतने जितने प्रत्यय उतने से बंध है, तो उपयोग से बंध है ये था ही नहीं, ज्ञान के कारण बंध था ही नहीं ना, तो पर का उपयोग करने से बंध हुआ और स्व का उपयोग करने से बंध रुक गया, ये बात वहां नहीं आती, उसमें राग कितना है ये हमने प्रत्ययों के कारण बंद है, तो वहां मिथ्या तो है कि नहीं है, अविरति है कि नहीं, उसकी बात करेंगे। देखो ऐसा भी है, उतने ही प्रत्ययों से कितने विविध कर्म बंधे, मिथ्या तो गुणस्थान में हमने देखा था कितने कर्म बनते हैं, एक तीर्थंकर नहीं बनते और आहार दिक नहीं बनते, बाकी तो नाना जीवों को ये बाकी तो 117 प्रकृतियां बनती है ना, तो उसमें प्रत्यय है हमने देखा था, और उसमें किसी को कौन सी प्रकृति बनती, किसी को कौन सी बनती, किसी को नरक गति बन रही है, किसी को देव गति, कर्म अलग अलग बन रहे हैं ना, ज्ञानावरण बन रहे, दर्शनावरण भी बन रहे, तो प्रत्यय वही, और इतनी विविधता कर्मों की इकट्ठे करने में, तो वहां ऐसा आता है ये निमित्त के कारण कार्य नहीं होता है, वो जो पुद्गल परमाणु है कर्म होने योग्य वे स्वयं जो जिनमें पात्रता है ज्ञानावरण रूप बनने की वो ज्ञानावरण रूप हो रहे, जिनमें पात्रता है दर्शनावरण वो दर्शन, निमित्त तो एक पड़ा है वहां प्रत्ययों का, ऐसे 8 कर्म बन रहे हैं तो 8 कर्मों के लिए 8 परिणाम अलग अलग नहीं हो रहे, परिणाम तो जो कुछ एक हुआ है और उसके कारण कार्य अलग अलग 8 हो रहे हैं, जैसे हम बाह्य में भी देखते हैं निमित्त एक पड़ा है सामने 1000 की नोट पड़ी है और अलग अलग सामने जीव है तो उनके परिणाम अलग अलग हो रहे हैं।
देखो अभी तो ये थोड़ा सा विषय बाहर का विषय है, अभी हम थोड़ा सा भव परावर्तन का सोचे तो उस भव परावर्तन में भी देखो अभी क्रम से जो कोई परिणाम होनी चाहिए वो होनी चाहिए,
भाव परिवर्तन,
सॉरी भाव परिवर्तन मुझे कहना था, मैं भव बोल गया, तो भाव परावर्तन में जीव के जो विविध परिणाम है वो भी क्रम से होने चाहिए, जिससे ये कर्म भी उसी तरह के बंधे। अभी देखो कितनी रेयर पॉसिबिलिटी है, और उसके कॉम्बिनेशन तो असंख्यात लोक प्रमाण वालों के कॉम्बिनेशन से। यानी अभी हमको ये सोचते हैं तो फिर वो भाव परावर्तन का थोड़ा सा आकलन होने चालू हो जाते हैं कि कैसा होना चाहिए, और ऐसी रेयर पॉसिबिलिटी भी हम अनेक बार पार कर चुके हैं।
आनंद तो हाँ, आपका ऐसा प्रश्न है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है तो क्या जरूरी है कि उसका उदय होगा ही? हाँ जरूर उदय होगा, उदय तो होगा ही। तीर्थंकर प्रकृति का बंध है और ऐसे अंदर पड़ी पड़ी उसका क्षय कर दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ आहारक द्विक का हो सकता है कि उसका यूज में ना आवे, परंतु तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो होगा ही। नहीं, उसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, तीर्थंकर जीव लिमिटेड होते हैं तो उसका बंद करने वाले भी उतने ही लिमिटेड हो गए। क्योंकि इतना लंबे काल में कितने थोड़े जीव हो गए तीर्थंकर, परंतु केवली तो कितने होते हैं, वो तो एक भूमि के देखे आपने, खाली भरत की बात कर रहे हैं अब। कल्प काल में आप भरत भूमि की बात कर रहे हैं, 24 और 24 48 ऐरावत, और वो भी एक भरत के देख रहे हैं आप। भरत 5 है, ऐरावत भी 5 है, और विदेह 32x5 है, 160 यानी टोटल 170 है। नहीं मगर आप ये कल्प काल की बात कर रहे हैं ना, कल्प काल की बात। मोक्ष तो कितने जाएंगे, हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव। हाँ वो तो फिक्स है उसकी संख्या, तीर्थंकर भी उनके उनमें इंक्लूडेड है। 608 में तीर्थंकर का भी नंबर उन्हीं में ले लेना। हाँ तो जुड़ना यानी उस रूप परिणामित होना ही जुड़ना है। जुड़ना यानी हमको तो सामने दिख रहा है, अभी मुझे नहीं देखना, वो नहीं जुड़ूंगे, वो बात नहीं होती है। जुड़ गया इसका अर्थ है वो क्रोध रूप मान रूप माया रूप जो कुछ है उसके जो प्रत्यय रूप परिणामित हो गया है उसका अर्थ उसका जुड़ना है। ऐसे थोड़े हमको कैसे पता चलता है कर्म का उदय कौन सा चल रहा है, हमको जुड़ना है कि नहीं जुड़ना। ये हम जुड़ गए हैं, ये हमारे भावन से पता चलता है कि हम उसमें जुड़ गए हैं। यहाँ दोनों राग द्वेष सब चलता है। ऐसा नहीं कि उदय आया है अभी हमको जुड़ना है कि नहीं जुड़ना, हमको कोई उसमें चॉइस है ही नहीं अपना। हम तो हमारे में है, कर्म कर्म में है, जुड़ सकते नहीं, परंतु अनादि से माना नहीं ऐसा। ये मान्यता हो रही ना कि मैं शरीर रूप हूँ, ये मिथ्यात्व कर्म के उदय में जुड़ गया है। स्वयं मिथ्यात्व रूप परिणत हुआ है, उसका अर्थ ही वो मिथ्यात्व में जुड़ गया है, वो तो जुड़ गया है, वो निमित्त का कथन है।
जुड़ गए की बात मैं बताऊंगा आपको। आप मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो पहले आलू प्याज आदि सब कुछ खाता था, तो उसके प्रति राग था, अब उसने छोड़ दिया और वो अपने भाई के घर में भी गया, तो वहां वो पक रहा था, तो उसको अभी द्वेष हुआ, तो वो भी जुड़ गया। समझ में आया जुड़ने का अर्थ? तो हम कहां दूर हो गए, पहले मोह राग करते थे, अभी द्वेष किए, यानी कषायों से तो हम दूर नहीं हुए ना, तो वही जुड़ना है। हम तो ऐसा समझते कि अरे ये अच्छा चाह, ये बहुत अच्छा है, चलो ले ले, वो जुड़ गया, ऐसा नहीं, ये मेरे पास नहीं है और उसके पास है, ये भी जुड़ गया।
उसका भी जितना वर्णन करे उतना कम है। पहले तो केवल संयोगों से ही राग द्वेष होते थे, अभी दूसरों के कषाय दूसरों के परिणाम देख देख कर भी अपने को ही राग द्वेष होते हैं। वहाँ ऐसा सोचना कि ये भाव परावर्तन में हम भी सभी प्रकार के भाव करके आए, दूसरों के भाव देखकर हमको बहुत ऐसा लगता है कैसे जीव कैसे परिणाम करते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या उनका तरीका है। तो बिल्कुल इसका हम विचार करेंगे आगम का, वही तो है हम अपने परिणामों से भिन्न है। समय सार में क्या बात है, राग से भिन्न अपने को देखो, तो जो अपने को तो राग से भिन्न देख रहे हैं और सामने वाले को तो कषाय वाला देख रहे हैं, नहीं समझे? अभी ये प्रत्यय की बात कर रही है, 100 पेज पर नीचे का पैराग्राफ। प्रत्यय प्ररूपणा करते समय चतुस्थानिक, अभी चतुस्थानिक यहाँ के लिए किसको कहना चतुस्थानिक, तो जो चार गुण स्थानों में बनती है उसको कहना चतुस्थानिक। अभी हमने जो पहली लिस्ट देखी थी, पुरुष वेद चारों गुण स्थानों में बनता है, आदि आदि हमने देखे थे ना, 12 कषाय चारों गुण स्थानों में बनते हैं, मनुष्य गति है नारकियों के लिए चारों गुण स्थानों में बनती है, तो उसको चतुस्थानिक कहा। तो प्रत्यय प्ररूपणा करते समय चतुस्थानिक यानी चार गुण स्थानों में बनने वाली प्रकृतियों के समान ही प्रत्यय प्ररूपणा करना चाहिए। जैसे हमें अभी हमने जो पहला सूत्र इसमें नरक गति के बारे में जो पहली लिस्ट देखी थी, 93 पृष्ठ पर जो लंबी लिस्ट देखी थी, और उसके प्रत्यय अभी हमने आगे देखे थे 96 पृष्ठ पर, 96 पर। ये चतुस्थानिक प्रकृतियां हैं, समझ में ना, ये कौन कौन सी। अभी हमने जो 93 पेज पर जो पूरी ये लिस्ट देखी, 5 ज्ञानावरण है, 6 दर्शनावरण है, वगैरह वगैरह सारी, ये चतुस्थानिक कहा था इसको, क्योंकि चारों ही नारकी चारों ही गुणस्थानों में इनका बंध हो सकता है, पहले दूसरे में हो सकता है, तीसरे चौथे में होता है, ऐसे बहुत सारी हमने देखी थी इसमें प्रकृतियां। तो ये जो प्रकृतियां हैं उनके लिए पहले गुणस्थान में प्रत्यय कितने थे, दूसरे में कितने थे, तीसरे में कितने थे, चौथे में कितने थे, इसकी लिस्ट हमने 96 पृष्ठ पर देखी थी। देखो वहां 96 पर वहां पढ़ेंगे, फिर उसमें क्या डिफरेंस है वो यहां बताएंगे। तो मिथ्या दृष्टि नारकी जीव के मूल प्रत्यय चारों होते हैं। मिथ्या तो गुणस्थान में तो चारों है, मिथ्यात्व अविरति कषाय और योग मिला ना। नाना समय संबंधी उत्तर प्रत्यय 51 होते हैं, तो उसमें कौन से है, तो यहाँ नारकियों को औदारिक का योग का उदय नहीं है, योग में उसको नहीं लेना है, औदारिक मिश्र भी नहीं है, और कषाय वाले में स्त्रीवेद का उदय नहीं है, पुरुष वेद का उदय नहीं है, तो इन चार प्रत्ययों का अभाव है। उदय है, हाँ देखो देखो, अरति शोक का उदय है, परंतु हास्यरति को उसमें से निकाला नहीं उन्होंने। हास्यरति का उदय का अभाव नहीं बताया है, नरक गति के साथ शोक अरति बनती है, वो बात सही है, उदय का अभाव कहाँ कहाँ है यार। देखो इसमें ये प्रत्ययों में हास्य रति के कभी अभाव बताया नहीं है वहां पर। अभी आप क्या कहते हैं, उदय है वहां पर, हास्य रति का भी वहां उदय है। हाँ दूसरों को हास्य है ना, दूसरों को सता कर वो आनंद मानते वहां भी। अभी यहाँ जो बात बता रहे कि वैसे जो हमने वहां देखे थे चतुस्थानीय में, चतुस्थानीय में क्या क्या देखे, पहले गुणस्थान वाले को, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। अब ये जो प्रकृतियां हम देख रहे हैं वो द्विस्थानीय है, पहले और दूसरे गुणस्थान में बनने वाली है, तो उनके लिए भी प्रत्यय वे ही है, उसमें कुछ अंतर होगा तो अब बताएंगे। विशेष इतना है कि तिर्यक आयु के मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में यहाँ 49 प्रत्यय ने तिर्यक आयु के ने तिर्यक आयु बांधने वाले के या तिर्यक आयु के बंध के मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में 49 प्रत्यय है, क्योंकि इसके वैकृत मिश्र और कारमाण प्रत्ययों का अभाव है। कोई नारकी तिर्यक आयु बांधेगा तो कब बांधेगा? अंतिम 6 महीने में। कोई भी आयु बांध देव है या नारकी है, भोगभूमि के जीव है, ये अंतिम 6 महीने में आयु बांधते हैं। तो क्या वैकृत मिश्र अवस्था में वो बांधेंगे? उनके वैकृत का योग होगा कि नहीं होगा? तब वैकृत मिश्र काल में आयु का बंध होता नहीं है। जब नारकी जीव विग्रह गति में है, मरकर जा रहा है नरक नारकी होने के लिए, तो विग्रह गति में भी उसको अगले आयु का बंध तो नहीं होता है। इसलिए यहाँ क्या कहा, तिर्यक आयु का बंध जो कर रहा है, मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में 49 प्रत्यय, वहां हमने 96 पृष्ठ पर कितने देखे थे? हाँ 51 देखे थे, 51, क्योंकि वहां तो सभी अन्य प्रकृतियों की बात चल रही थी, यहाँ तो आयु के बंध की बात चल रही है। डिफरेंस ख्याल में आ रहा है ना आपको? हाँ, क्योंकि वैकृत मिश्र और कारमाण प्रत्ययों का अभाव है। अब तिर्यक आयु को ही क्यों लिया, मनुष्य आयु को क्यों नहीं लिया? इस जो हमने अभी यादी देखी है, अभी ये जो हमने द्विस्थानगत प्रकृतियों की बात चल रही है, ये मनुष्य आयु वगैरह जो है वो हमने वो पहली जो लिस्ट देखी थी 93 पृष्ठ पर चतुस्थानीय वाले, उसमें उसकी बात की थी, उसके लिए भी यही कंडीशन डाली थी। आयु बंद कर रहा है उस समय वो वैकृत मिश्र और कारमाण वाला उसको नहीं होगा, वहां भी ये बात उन्होंने बताई थी। अब यहाँ क्या बताया, अभी जो हमने लिस्ट पढ़ी ना, कहाँ पर? 98 पृष्ठ पर 45 नंबर के सूत्र में, ये जो 25 प्रकृतियों की लिस्ट देखी है उसमें तिर्यक आयु का नाम है। उनके उन प्रकृतियों के संबंध में चर्चा चल रही है। मिथ्या दृष्टि जीव मनुष्य आयु बांधता है नहीं बांधता, उसकी यहाँ बात नहीं हो रही है। वो तो बांधता है, उसकी तो लिस्ट तो हमने वो पहले वाली जो लिस्ट देखी थी चौथे गुणस्थान तक बंधने वाली, उसमें उसका नाम आया था और उस संबंध में वहाँ चर्चा हुई थी। अब हमारी चर्चा इन 25 प्रकृतियों के बारे में ही है, तो इनमें से जो तिर्यक आयु की बात है, तो उसको बांधने वाले मिथ्या दृष्टि के वैकृत मिश्र का योग नहीं होगा और कारमाण का योग नहीं होगा, क्योंकि उस अवस्था में आयु का बंध होता नहीं। ये तिर्यक गति के लिए ये नहीं कहा, आयु के लिए कहा, क्योंकि गति तो हमेशा बनती है, कोई ना कोई गति बनती है, परंतु आयु तो अंतिम 6 महीने में बनती है, अपर्याप्त अवस्था में तो बनती नहीं है नारकियों में और देवों में, है ना? ये तो इसलिए इस तिर्यक आयु का अलग से बात बताई यहाँ विशेष करके। अब कौन से गति संयुक्त बांधते हैं उसकी चर्चा। तिर्यक आयु, तिर्यक गति, तिर्यक गति प्रायज्ञानुपुरी और उद्योत प्रकृतियों को मिथ्या दृष्टि एवं सासाधन सम्य दृष्टि तिर्यक गति से संयुक्त बांधते हैं, क्योंकि ये तिर्यक गति वाली प्रकृतियां हैं। मनुष्य गति बांधने वाले को ये उद्योत वगैरह तो बंधेगा नहीं। शेष द्विस्थान प्रकृतियां, ने इन चार को छोड़कर अभी जो हमने 25 प्रकृतियां गिनी थी, वे शेष द्विस्थान प्रकृतियां दो गतियों से संयुक्त बांधते हैं। इसका अर्थ अभी हमने वो प्रकृति में हमने देखा था कि जो है निद्रा प्रचला स्थान वृद्धि अनंत अनुबंधी है, किस गति के साथ बांधते? तिर्य गति के संयुक्त भी बांधते हैं और मनुष्य गति संयुक्त भी बांधते हैं। इसलिए ये तिर्यंच संबंधी चार को छोड़कर जो तिर्य गति के साथ ही बनती है, अन्यत्र नहीं बनती। अन्य जो प्रकृतियां हैं, अन्य में देखो ये चार को छोड़कर बाकी 21 प्रकृतियां, 25 में से चार छोड़कर, वो मनुष्य गति संयुक्त भी बांधता है और तिरंज गति संयुक्त भी बांधता है। सब प्रकृतियों के नारकी स्वामी हैं, क्योंकि नारकियों की बात चल रही है अपनी। यहाँ फुल स्टॉप देना, नारकी स्वामी है। बंधाध्वान और बंध विनष्ट स्थान सुगम है। स्त्यानुवृद्धि त्रय और अनंतानुबंधी चतुष्क का मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में चारों प्रकार का बंध होता है। चारों प्रकार के यानी सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव। अनादि बंध तो हमने देखा, जब तक विच्छित्ति नहीं होती तब तक किसी प्रकृति का, ये ध्रुवबंधी प्रकृतियों का तो अनादि का बंध है। सादि कब कहेंगे? जब कभी उपशम श्रेणी चढ़कर उतरा हुआ जीव अभी मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में आया हुआ है तो उसके लिए वो सादि हो जाएगा। ध्रुव तो जो अभव्य में तो ध्रुव ही होता है, और भव्यों के लिए जो ऊपर के गुण स्थानों में जाएंगे उसके लिए अध्रुव हो जाएगा। इनका सासाधन में सादि और अध्रुव बंध होता है। शेष सूत्रोक्त प्रकृतियों का बंध सादि व अध्रुव ही होता है। शेष यानी अभी तीन निद्रा और अनंतानुबंधी को छोड़कर अन्य जो है वो उसके बाद। अब कहते हैं ये 47 नंबर का सूत्र पढ़ेंगे अभी हम। ये 25 की बात हो चुकी हमारी। चौथे गुणस्थान में विच्छित्ति वाले होने वाले हमने पहले, विच्छित्ति यानी चौथे तक बंधने वाले की लिस्ट पहले देखी थी, यानी चारों ही गुणस्थानों में बंधने वाले। दूसरे गुणस्थान में बंध होने वाली 25 प्रकृतियों की भी बात देखी। अब यहाँ आगे बता रहे, मिच्छत्त नउंसय वेद हुंड संठान असंपत्त सेवठ शरीर संगण नामानम को बंधो को अबंधो। इनकी बंध विच्छित्ति कहाँ होती है? पहले में, यानी पहले में बनती है, आगे नहीं बनती। पहले गुणस्थान की बंध विच्छित्ति हमने कितनी देखी थी? 16 गिनेंगे आप? मिथ्यात्व, नपुसक वेद, हुंड संस्थान, असंप्राप्त सुपाटिका सहन है, एक इंद्रिय, स्थावर, आतप, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, बे इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर इंद्रिय, नरगति, नरगत्यानुपूरी, नरकायु। अब इनमें से नारकी जीव किस किस का बंध करते हैं? नरगति, नरकायु, नारकानुपूरी, इसको किसी का बंध नहीं करते, ना ही एक इंद्रिय, स्थावर, सूक्ष्म, आतप, वो सब का बंध करते हैं, ना बे इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर इंद्रिय, ये इनका बंध उनको होता ही नहीं है। तो तो अभी ये चार को छोड़कर 16 में से 12 प्रकृति उनके बनती ही नहीं है। तो जितनी बनती है उसमें से बंध विच्छित्ति कहेंगे। बंध विच्छित्ति कहते उसके जो बंध रहा था और जो बंध रुक जाएगा उसको बंध विच्छित्ति कहते हैं। तो नारकियों के ये बंधने योग्य 120 प्रकृतियां है ही नहीं है। ये जो 12 अभी हमने देखे एक इंद्रिय संबंधी है, या द्विंद्रिय, तीनद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, त्रिविकल तरह की तीन, सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, ये सभी उनके बनती ही नहीं है। हमने जो याद किया था ना क्रम से, देखो कैसे, मिथ्यात्व, नपुसक वेद, हुंडक संस्थान, असंप्राप्त सुपाटिका सहनन, उसके आगे एक इंद्रिय, स्थावर और आतप। नारकियों को तो यहां से आगे की कुछ नहीं बंधेगी, और देवों में एक इंद्रिय, स्थावर, आतप इतनी बंधेगी और इसके आगे की नहीं बंधेगी। ये ऑर्डर से हमने क्यों याद किया? आगे की जो कौन सी है, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, बेइंद्रिय, तीनद्रिय, चतुरिंद्रिय, नरगति, नरगत्यानुपूरी, नरकायु वगैरह, तो इस ऑर्डर से पहली जो चार है नारकियों को तो वही बनती है। देवों को चार प्लस आगे की तीन, ये बनती है। हाँ, चार की बंध की विच्छित्ति कहेंगे, चार ही बनती है तो चार की विच्छित्ति कहेंगे। बंध योग्य है उसमें से तो हम हिसाब लगाएंगे ना, जो बांधते ही नहीं तो इसकी विच्छित्ति, अरे वो बांधा ही कब था विच्छित्ति होने के लिए छोड़ेगा कौन जो बांध रहा है। तो यहाँ देखो, अभी हम नीचे अर्थ पढ़ते हैं। मिथ्यात्व, नपुसक वेद, हुंड संस्थान और असंप्राप्त सुपाटिका, शरीर सहनन नाम कर्म का कौन बंधक और कौन अबंधक है, यह सूत्र सुगम है। मिच्छा इट्ठी बंधा, एदे बंधा, अवशेषा अबंधा, नारकियों के चार गुणस्थानों में से एकमात्र मिथ्या दृष्टि जीव ही इसका बंद करते हैं। बंद करते हैं ने, मिथ्यात्व का तो बांधते ही निरंतर, अभी बाकी जो है वो तो ऑप्शनल है, उनका बंद कर सकते हैं। आगे के गुणस्थान वाले इनका बंद ही नहीं करेंगे। मिथ्या दृष्टि उससे बराबर करना, मिथ्या दृष्टि नारकी जीव बंधक है, ये बंधक है, शेष नारकी जीव अबंधक है। इस सूत्र से सूचित अर्थों की प्ररूपणा करते हैं। अब पहले में पहले कौन पहले विच्छित्ति होती है ये पूछेंगे, बंधक की विच्छित्ति होते हैं कि उदय की विच्छित्ति होती है पहले, मिथ्या तो के बंधक की विच्छित्ति पहले होती है कि उदय की, दोनों साथ में, बंध और उदय दोनों मिथ्यात्व गुणस्थान में ही है, आगे कहीं नहीं है। तो देखो यहाँ क्या लिखा, मिथ्यात्व प्रकृति का बंध और उदय दोनों एक साथ विच्छिन्न होते हैं, क्योंकि मिथ्या दृष्टि गुणस्थान के न रह गया, गुणस्थान के चरम समय में इसके बंध और उदय का विच्छेद देखा जाता है। अब नपुसक वेद का उदय पहले मिटेगा कि बंध पहले मिटेगा, उदय यहाँ तो एकमात्र उसी का उदय है, तो उदय मिटेगा कि नहीं मिटेगा इसका सवाल है, नारकियों की बात चल रही है। उदय मिटेगा की बात ही नहीं ना, उनका एकमात्र नपुसक वेद का ही उदय। हुंड संस्थान के बारे में, हुंड संस्थान का ही उदय है, बंध तो अभी मिटने वाला है, पहले गुणस्थान में बंध होता है, आगे नहीं होता है। नपुसक वेद का बंध नारकी भले हो, बंध की बात है, पहले गुणस्थान वाले ही करेंगे, दूसरे गुणस्थान वाले स्त्री वेद या पुरुष वेद में से कोई एक बंद करेंगे, और तीसरे चौथे वाले पुरुष वेद को बांधेंगे। तो पहले बंध मिटा के उदय मिटा, उदय मिटा ही नहीं, सभी नारकियों में उसी का उदय चलता है। असंप्राप्ति का सुरपाटिका सहनन तो होता ही नहीं नारकियों में, इसलिए वहां भी ये सवाल नहीं पैदा होता कि उदय पहले मिटा के बंध पहले मिटा। इन नामकर्मों का पूर्व में बंध विच्छित्ति होते पश्चात उदय, क्योंकि फिर भी यहाँ लिखा उदय होता है, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान के चरम समय में बंध के नष्ट हो जाने पर असंयत समय दृष्टि गुणस्थान में नारकियों में इनका उदय विच्छेद पाया जाता है। विशेष इतना है कि ये नपुसक वेद और हुंड संस्थान के लिए उनके कहा कि चौथे गुणस्थान तक है, और सहनन के बारे में कहेंगे अभी, वो विशेष बता रहे। विशेष इतना है कि असंप्राप्त सुपाटिका शरीर सहनन के पूर्व या पश्चात बंधोदय विच्छेद होने का विचार नहीं है, क्योंकि बंध को छोड़कर नारकियों के वहाँ इसके उदय का अभाव है, ये सहनन होता ही नहीं नारकियों में, इसलिए वो उसका सवाल ही नहीं पैदा होता। और जो चौथे गुणस्थान तक नपुसक वेद भी है और हुंडक संस्थान भी है, उसको कहने में यहाँ भी उन्होंने कहा है कि चौथे में विच्छित्ति होती है, फिर भी हमें समझने के लिए समझना है कि वहाँ सदाकाल उसका उदय ही होता है, गुणस्थान ही चार है, इसलिए चौथे में विच्छित्ति होती है ऐसा कहने का प्रघात है, परंतु आगे के गुणस्थान नारकियों में है ही नहीं। अब ये स्वोदय से बनती है कि परोदय से बनती है, बंध कहाँ है, मिथ्यात्व में, तो मिथ्यात्व का बंध मिथ्यात्व के उदय में है कि नहीं है, हाँ तो स्वोदय से ही कहेंगे हम। मिथ्यात्व नपुसक वेद और हुंड संस्थान का स्वोदय बंध होता है, स्वोदय, हाँ ये स्वोदय हुआ है, स्वोदय करना, स्व स्व उदय, स्वोदय। विशेष यह है कि देखो मिथ्यात्व का उदय है पहले गुणस्थान में, नपुसक का उदय है, हुंड संस्थान का भी उदय है, और ये बंद भी रहे, तो उसको हम कहेंगे स्वोदय से बंद हो रहा है। दूसरी बात, विशेष है कि हुंड संस्थान का बंध परोदय से भी होता है, ऐसे कौन सा संस्थान है कि जिसके उदय में ये हुंड संस्थान बनता है? हाँ, विग्रह गति में संस्थान ही नहीं होता, हुंड की क्या बात करते हैं? संस्थान नाम कर्म का उदय, जहाँ जन्म लेना है यानी शरीर आहार पर्याप्ति शुरू करते हैं ना, वहाँ जाकर वहाँ उसका उदय शुरू होता है। ये पहले आपने सुना था कभी? जैसे शरीर नाम कर्म का उदय विग्रह गति में नहीं होता, जहाँ जन्म लेना है वहाँ होता है, वैसे संस्थान यानी उसका आकार, इसका उदय भी वहाँ जाने पर होता है। तो बीच में कोई आकार रहता होगा कि नहीं होता? वो क्या आनुपूर्वी, तो नरक गति में जाने वाला जो जीव है, जिसके नरक गत्यानुपूर्वी का उदय है, तो पूर्व का तीरियंच या मनुष्य का आकार चल रहा है वहाँ, पूर्व का आकार वहाँ चलता है, तो नारकी का आकार कब धारण करेगा? संस्थान नाम कर्म का उदय शुरू होता है तब, उस रूप में वो शरीर को ढाल नहीं, पर्याप्ति के पहले समय से उदय शुरू हुआ ना, तो उस उदय में उस वैसे वैसी रचना होगी उस आकार की। ऐसा ही आक्षेप क्यों लिया? तो उसके वैसे संस्थान नाम कर्म का उदय है। और हम क्या मानते हैं, हमारा बच्चा हमारे जैसे हुआ, तो माँ बाप झगड़ते ना, ये मेरे जैसा दिख रहा है, वो मेरे जैसा दिख रहा है। अभी आप कहना दादा दादी ये मेरे जैसा दिख रहा है। नरक गति में एक कहाँ गया, ये संस्थान की बात है ना, क्योंकि विग्रह गति में उसका उदय नहीं रहता। अब तीसरी लाइन, असंप्राप्त सुपाटिका शरीर सहनन का बंध परोदय से होता है, क्योंकि यहाँ सहनन का उदय नहीं है और सहनन का बंध हो रहा है। सहनन एज सच निरंतर बंधेगा, परंतु कौन सा सहनन बंधेगा उसमें ऑप्शन है। मिथ्यात्व गुण स्थान में तो असंप्राप्ति का बन सकता है, तो उसके लिए ऑप्शन 6 में से एक बंधेगा वहां पर, दूसरे गुण स्थान वाले 5 में से एक बंद करेगा, और तीसरे चौथे वाले वज्रेशम नाराज का बंद करेंगे, क्योंकि नारकियों में सहनन का उदय नहीं रहता। अब ये निरंतर बंध है कि नहीं उसकी बात करेंगे। मिथ्यात्व का बंधन निरंतर होता है, क्यों होता है निरंतर? क्योंकि वह ध्रुवबंधी है, क्योंकि वह ध्रुवबंधी प्रकृति है। सूत्रोक्त शेष तीन प्रकृतियों का सांतर बंध होता है। अब नपुंसक वेद का बंध होता है, उसको सांतर क्यों कहा? प्रतिपक्ष वाली है। दूसरी कौन सी? अभी हुंड संस्थान का भी, वो भी प्रतिपक्ष वाली है, और असंप्राप्त सुपाटिका सहनन भी प्रतिपक्ष वाली है, क्योंकि एक समय में उनके बंध का विश्राम देखा जाता है, एक समय में ये बंध है, दूसरे समय में कोई दूसरा बंध हुआ। बनता है ना उनके भी, नारकियों में कोई भी एक वेद बंधेगा, नपुसक उदय नपुसक वेद का ही है, बंधेगा तीनों में से एक, मिथ्यात्व गुणस्थान में, दूसरे गुणस्थान वाले को दो में से एक, और तीसरे चौथे वाले को पुरुष वेद ही बंधेगा। उदय सर्वत्र नपुंसक वेद का ही चल रहा है, पे वो तो वहां तो एक ही वेद होता है नारकियों में, अन्य वेद होते ही नहीं वहां। अब प्रत्यय कौन कौन से होगे उसकी चर्चा है। प्रत्ययों की प्ररूपना चतुस्थानिक प्रकृतियों के प्रत्ययों के समान है। चतुस्थानिक प्रकृतियां ने चौथे गुणस्थान तक बंधने वाली प्रकृतियां, अभी हमने देखा ना द्विस्थानिक और चतुस्थानिक, ये चारों ही प्रकृतियां दो गतियों से संयुक्त बनती है। कौन से? मिथ्यात्व नपुंसक वेद, हुंडक संस्थान और असंप्राप्त सुपाटिका सहनन। मनुष्य गति के साथ भी उसका बंध हो सकता है, तिरिंज गति के साथ भी बंध होता है, गति से कोई इसका लेना देना नहीं, दोनों के साथ बंधेगा। नारकी जीव स्वामी है, ये बंध के स्वामी कौन है? तो नारकियों की बात चल रही, तो नारकी स्वामी है। बंधाध्वान और बंध विनष्ट स्थान सुगम है, मिथ्यात्व में ही बंधु विच्छित्ति होती है उसके अंतिम समय में। मिथ्यात्व प्रकृति का बंध चारों प्रकार का होता है क्योंकि वह ध्रुवबंधी प्रकृति है। चार प्रकार कौन से? हाँ, सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुव। आप क्या कहते? वो प्रकृति बंध है, ऐसी बात उसकी याद आ गई। हाँ, ये कौन से प्रकार के उसकी बात। शेष प्रकृतियों का सादि व अध्रुव बंध होता है क्योंकि ये ध्रुवबंधी नहीं है। ध्रुवबंधी में कोई अपेक्षा नहीं, वो प्रतिपक्ष है नहीं है उसकी कुछ नहीं, बस वो निरंतर ही बनती है। जब तक विच्छित्ति नहीं होती जिस गुणस्थान में, तब तक वो अनादि से बनती आई है और बनती रहेगी। फिर भी यहाँ सादि क्यों कहा या अध्रुव क्यों कहा? सादि इसलिए कहा कि एक बार उपशम श्रेणी चढ़ के नीचे उतरे हुए कि वहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है उसको, नीचे मिथ्यात्व में आने के बाद तभी तो मिथ्यात्व बनना शुरू हुआ, पहले रुक गया था जब तक ऊपर था तभी, इसलिए सादि कहा। और फिर अध्रुव क्यों? भव्य जीव है वो, ऊपर के गुणस्थानों में चले जाएंगे, अध्रुव हो जाएंगे वो तो, यानी वो तो ध्रुव नहीं रहा अभी। अनादि से जो ध्रुव रूप बनता था उसमें रुकावट आ गई, वो अध्रुव हो गया। अब इसमें से मनुष्यावस्य को बंधो को अबंधो, मनुष्यायु का कौन बंधक और कौन अबंधक है, यह सूत्र सुगम है। पहले जो हमने बड़ी लिस्ट देखी थी उसमें से मनुष्यायु को यहाँ छोड़ दिया था, क्योंकि आयु का बंध तो अंतिम समय में करता है, तो उसमें प्रत्यय कम ज़्यादा हो जाते हैं, वहाँ प्रत्ययों की प्ररूपणा करनी थी एक साथ, तो उन सबको एक साथ लिया था। दूसरे गुणस्थान में 25 में तिर्यगायु को गिनाया था, मगर प्रत्ययों की प्ररूपणा में कहा था कि इसके लिए इतने प्रत्यय कम होते हैं। अब यहाँ मनुष्यायु की बात कर रहे हैं। मिच्छा इट्ठी शासन सम्मा इट्ठी असंजत सम्मा इट्ठी बंधा एदे बंधा अवशेषा अबंधा। मिथ्या दृष्टि, शासन समय दृष्टि और असंयत समय दृष्टि बंधक है, ये बंधक है। शेष नारकी जीव अबंधक है। शेष में कौन बचे? हाँ प्रेरणा बेन, हाँ मंदा मंदा बेन, कौन बचे शेष नारकी में? हाँ हाँ, तीसरे गुणस्थान वाले जो कि आयु का बंध ही नहीं करते हैं। उन्होंने कहा सम्यक मिथ्या दृष्टि, आपने सातवें पृथ्वी की बात की। अच्छा हाँ, नहीं सम्यक मिथ्यात्व भी कहा उन्होंने। देखो इसलिए इसको भी अलग निकाला, पहले जो हमने लिस्ट देखी थी, पहले जो नाइन कहाँ पर देखी थी, 93 पर, हाँ 93 पर देखी थी, कहाँ देखी थी, हाँ 93 वाली लिस्ट। अब ये जो सारी प्रकृतियाँ हैं वो पहले दूसरे तीसरे चौथे चारों ही गुणस्थान में बनने वाली है, इसलिए उसके साथ मनुष्यायु को नहीं रखा था। यह मनुष्यायु की अलग सेपरेट बात की। आप कहेंगे तो तिर्यगायु को तो लिया वो 25 प्रकृतियों में, तो वहाँ तीसरे गुणस्थान का सवाल कहाँ आता है बीच में? पहले और दूसरे की लिस्ट थी वे, फिर भी उसमें कौन सा प्रत्यय कम होते उसकी बात अलग से बता सकते थे, इसलिए उसको वहाँ रखा उस लिस्ट में। अब यहाँ मनुष्यायु का अलग निकाला। देखो इस सूत्र से सूचित अर्थ की प्ररूपणा करते हैं। यहाँ बंदर उदय के पूर्व या पश्चात उदय होने का विचार नहीं है। क्यों विचार नहीं है? यह मनुष्यायु का तो उदय हो ही नहीं सकता, यह नारकायु का उदय चल रहा है, क्योंकि बंध को छोड़कर नारकियों में इसके उदय नहीं रहता, इसलिए कंपेयर करना हमको बंध या उदय में, उसकी तो बात हो ही नहीं सकती। अब ये किसके उदय में बन रही है? हाँ नारकायु के उदय में बन रही है, तो नारकी जीव से परोदय से बांधते हैं, क्योंकि नरक गति में मनुष्यायु के उदय का विरोध है। फिर कहते हैं इसे निरंतर बांधते हैं। हमने देखा था आयु, चारों आयु जो है वो निरंतर बंधी है, यानी अंतर्मुहूर्त तो बंधेगी ही, क्योंकि एक समय में इसके बंध का विश्राम नहीं होता। जो एक समय में बंधकर रुक सकती है उसको सांतर कहते हैं, और जो एक समय में जिसका बंध नहीं रुकता उसको निरंतर कहते हैं। मिथ्या दृष्टि के इसके 49 प्रत्यय होते हैं। अभी हमने देखा था ना, क्योंकि इसका बंध वैकिरेक मिश्र और कार्मण प्रत्ययों से नहीं होता। फुल स्टॉप लगाना। सासाधन के 44 और असंयत समय दृष्टि के 40 प्रत्यय होते हैं। शेष कथन सुगम है। इनमें भी जो आयु का बंध होता है तो पर्याप्त अवस्था में बंध है ना, अंतिम 6 महीने में, इसलिए उनके भी उतने प्रत्यय कम कर दिए। वहां भी मनुष्य को नारकी जीव मनुष्य गति से संयुक्त बांधते हैं। नारकी जीव स्वामी है, जब मनुष्यायु कब बंधेगी, उसके साथ मनुष्य गति भी बंध रही है, तो मनुष्यायु बंध रही है। बंधाद्वान और बंध विनिष्ट स्थान सुगम है। इसका बंध साधी व अध्रुव होता है, क्योंकि यह अध्रुव बंदी प्रकृति है। हमने अध्रुव बंदी की देखी थी ना, उसमें इसका नंबर लग गया था। ध्रुवबंदी हमने 47 देखी थी और अध्रुवबंदी 73 देखी थी। उसमें से जो 11 देखी थी अप्रतिपक्ष वाली अध्रुव, उसमें ये आयु कर्म है। अब तीर्थयरण आम कम्मस को बंधो को अबंधो, बात नारकी की चल रही है अभी। तीर्थंकर प्रकृति भी बांध रहे हैं ना, कोई नारकी। यह सूत्र ये तीर्थंकर नाम कर्म का कौन बंधक है और कौन अबंधक है, प्रश्न चिन्ह लगाना। यह सूत्र सुगम है। असंयत सम्मादिट्ठी बंधा एदे बंधा अवशेषा बंधा। असंयत समय दृष्टि नारकी बंधक है, ये बंधक है, शेष नारकी अबंधक है। अब यहाँ उदय होता है कि पहले बंधक उच्छित्य होते, ये सवाल ही नहीं आता। हाँ, यहाँ उदय होता है नहीं। तीर्थंकर प्रकृति के बंध का उदय से पूर्व अर्थात पश्चात विच्छेद होता है, इस प्रकार तुलना यहाँ नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का यहाँ नारकियों में उदय नहीं होता। इसी कारण इसका परोदय से बंध होता है, अपनी प्रकृति के उदय में नहीं होता, इसलिए परोदय का। इसका बंध निरंतर होता है, क्योंकि एक समय में इसके बंध का विश्राम नहीं होता, इन्हें लगातार अंतर्मूर्त बनता ही है। एक समय में बंधे और थोड़े विश्राम लिया, फिर ऐसा नहीं होता। इसके प्रत्यय यानी इसके कारण, हमने पहले बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट देखी थी, तो नारकियों के लिए यहाँ कौन कौन से प्रत्यय है। दर्शन विशुद्धता, लब्धि संवेग संपन्नता, अरहंत भक्ति कौमा श्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति आदि है। मनुष्य गति से संयुक्त इसका बंध होता है, नारकी जीव स्वामी है, बंधाध्वान और बंध विनिष्ट स्थान सुगम है। इसका बंध साधी व अध्रुव होता है, क्योंकि यह अध्रुव बंदी प्रकृति है। एवं तिसु वरिमासु पुड़वीसु ने यौवम। ये तीर्थंकर प्रकृति तक की बात जो है, तीसरे पृथ्वी तक ऐसा जानना, क्योंकि उसके नीचे के नारकी जो है वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं करते। इस प्रकार यह व्यवस्था उपरिम 3 पृथ्वियों में जानना चाहिए। यह बंध स्वामित्व की अपेक्षा कहा गया है, किंतु विशेषता का अवलंबन करने पर भेद है, उसे कहते हैं। मनुष्य गति और मनुष्य गति प्रायज्ञानुपूर्वी का बंध प्रथम पृथ्वी में मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में सांतर निरंतर नहीं है, किंतु सांतर ही है, क्योंकि यहाँ तीर्थंकर प्रकृति के सत्व वाले मिथ्यादृष्टि नारकी जीव नहीं होते हैं। पहले पृथ्वी के मिथ्यादृष्टियों की बात चल रही, मिथ्यादृष्टियों की। ये बात क्लैरिटी हुई? हाँ, नवीन है बात, कुछ नया पता चला? नहीं समझ में आए। हाँ, अरविंद भाई ने पकड़ लिया, क्या कहना चाहते? तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि जीव दूसरे नरक में तीसरे नरक में हो सकता है कि नहीं हो सकता? मिथ्या दृष्टि जीव सत्ता वाला, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला जीव, जिसने जो मनुष्य में जिसने वो मिथ्या तो तीर्थंकर प्रकृति बांधी थी, फिर अंत में मरण के समय मिथ्यात्व में गया, फिर नारकी में गया, तो वो मिथ्यात्व गुणस्थान में है तब तक वो तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला है ना? तो यहाँ क्या बात करें, ऐसा ही जो पहले नरक में जाता है। उस दिन बात करते करते मैंने तीनों नरक का नाम लिया था कि तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता है और सम्यक्त्व के पहले नरकायु बांधी है और क्षायिक प्राप्त नहीं किया है, तो तीनों नरक में कहीं भी जा सके, ऐसा मैंने वहां उस समय। अब यहाँ क्या बताते हैं, पहले नरक में जाने वाला तीर्थंकर की सत्ता वाला मिथ्यात्व गुणस्थान उसको हो ही नहीं सकता, उसका अर्थ क्या, वो सम्यक्त्व प्राप्त करके ही वहां जाएगा। हाँ, सम्यक्त्व के साथ का अर्थ क्या है, क्षायिक समय दृष्टि होगा, कृतकृत्य वेदक होगा। तो अभी कैसे हो, पहले मिथ्यात्व में नहीं हो सकता, इसका अर्थ क्या, वेदक के साथ तो जा नहीं सकता। देखो इसको मैं फिर पढ़ती हूँ, यहाँ यानी पहले नरक में, पहले पृथ्वी में यानी पहले नरक में तीर्थंकर प्रकृति के सत्व वाले मिथ्या दृष्टि नारकी जीव नहीं होते हैं। यानी पहले नरक में जाने वाले कोई, जैसे श्रेणिक राजा गए तो वो मिथ्यात्व में गए क्या, सम्यक्त्व सहित किए? हाँ, तो वहां जाने वाले पहले नरक में सारे क्षायिक समय दृष्टि ही जाएंगे। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वालों की बात चल रही है। दूसरे और तीसरे नरक में तो वो मिथ्यात्व की अवस्था में ही जाएंगे, क्योंकि नीचे सम्यक्त्व सहित कोई जा ही नहीं सकते है। द्वितीय दंडक में तिर्य गति प्राज्ञानुपूर्वी और नीच गोत्र प्रकृतियों का सांतर निरंतर बंध नहीं होता किंतु सांतर ही होता है। किसकी बात चल रही है, तिर्य उसके अभी जो कोई लिस्ट बता रहे हैं ना, तिर्य गति प्राज्ञानुपूर्वी और नीच गोत्र, क्योंकि सप्तम पृथ्वी को छोड़कर अन्यत्र नरक गति में इन प्रकृतियों के निरंतर बंध का अभाव है। निरंतर बंध का अभाव यानी सांतर बंध होता है, और सातवीं पृथ्वी में निरंतर बंध होता है। तिर्य गति प्राज्ञानुपूर्वी और नीच गोत्र प्रकृति में यह भेद प्रथम द्वितीय और तृतीय पृथ्वियों में है। हाँ, तीर्थंकर प्रकृति की नहीं, ये सातवीं पृथ्वी की बात यहाँ पर है, गत्यानुपूर्वी के बारे में। अभी नीचे से तीसरा है, द्वितीय और तृतीय पृथ्वियों में उपघात परघात उच्छ्वास और प्रत्येक शरीर इन प्रकृतियों का असंयत समय दृष्टि गुणस्थान में स्वोदय ही बंद होता है, क्योंकि इन दोनों पृथ्वियों के अपर्याप्त काल में असंयत समय दृष्टियों का अभाव है। नहीं, देखो यहाँ क्या बात है, दूसरे और तीसरे पृथ्वियों में चौथे गुणस्थान वाले जो जीव है उनको परघात उच्छ्वास, उपघात परघात उच्छ्वास और प्रत्येक शरीर का उदय रहेगा कि नहीं रहेगा हर समय? वही वो बता रहे हैं कि जो चौथे में जो है, नहीं दूसरे और तीसरे पृथ्वी की बात चल रही ना, तो विग्रह गति में कोई समय दृष्टि होगा कि जो दूसरे और तीसरे नरक में जा सके, वो बात यहाँ बता रहे। दूसरे और तीसरे पृथ्वी वाले जो नारकी है उनको चौथा गुणस्थान पर्याप्त काल में ही होगा, विग्रह गति में और अपर्याप्त काल में नहीं होगा, इसलिए वो वहां कहा वो स्वोदय से ही बनता है। ख्याल में ना क्या कहना चाहते, इन दोनों पृथ्वियों के अपर्याप्त काल में असंयत समय दृष्टियों का अभाव है। अब मनुष्य गति और मनुष्य गति प्रायज्ञानुपूर्वी तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले मिथ्या दृष्टियों के निरंतर बनती है। जिनकी तीर्थंकर की सत्ता है और मिथ्या दृष्टि कब होगा, अपर्याप्त काल में एक अंतर्मूर्त के लिए, तब भी उनको कौन सी गति बन रही है, मनुष्य गति और मनुष्य गत्यानुपूर्वी ही बन गई, तो उसके लिए वो निरंतर कहेंगे। शेष नारकियों के सांतर बनती है, अन्य के लिए ऑप्शन है, कभी मिथ्या दृष्टि की बात चल रही ना, कभी मनुष्य गति बनेगी, कभी तिर्यंच गति बनेगी। असंयत समय दृष्टि के 40 प्रत्यय होते हैं, क्योंकि इन दोनों नरकों में असंयत समय दृष्टि अवस्था में वैकृत मिश्र और कारमण प्रत्ययों का अभाव है। दोनों नरकों से तीसरा और चौथा, वहां असंयत समय दृष्टि जन्म नहीं ले सकता, बाद में हो सकता है, इसलिए दूसरे तीसरे नरक में पैदा होने वाले जो विग्रह गति वाले जीव है उनमें कौन कौन से गुणस्थान हो गए, दूसरा होएगा क्या, दूसरा हो इतना होता ही नहीं नरक में नहीं जाता, एक को पकड़ने और दूसरे छुटती अपेक्षा इतना ही भेद है, अन्यत्र कहीं और कोई भेद नहीं है। ये भेद कहाँ है उसकी बात उन्होंने बताई, विशेषार्थ पहले नरक में सम्यक्त्व के साथ ही जाते हैं, सम्यक्त्व के सही जाने वाले की बात है ना, तो क्षायिक ही जाते हैं, ये बात तो कृतकृत्य वेदक कहो या क्षायिक कहो कि वो तो जा सकते हैं वो। हाँ, फिर प्रश्न क्या है आपका, हाँ नहीं जाएगा, क्षायिक बिना कोई सम्यक्त्व नरक में नहीं जाएगा सम्यक्त्व के साथ, ये बात हुई ना। अब तीर्थंकर की प्रकृति सत्ता वाला बांधने वाला नहीं का सत्ता वाला जा सकता है क्या, तो तीसरे नरक तक जा सकता है, तो पहले नरक में जाने वाला तो सम्यक्त्व सहित ही जाएगा, परंतु दूसरे और तीसरे में जाने वाला मिथ्यात्व में जाकर वहां पहुंचेगा, वो तो क्षायिक नहीं हो सकता है। हाँ, मिथ्या दृष्टि अवस्था में ही जाएगा, और हाँ तीर्थंकर क्योंकि नीचे समय दृष्टि जा ही नहीं सकते ना, ये कंडीशन है, समय दृष्टि जीव पहले नरक के अलावा अन्यत्र नहीं कहीं उत्पन्न ही नहीं हो सकते, तो अभी तीर्थंकर की सत्ता वाला है और वहां जाकर अपर्याप्त पूरी अवस्था करेगी तो इमीडिएट उनको सम्यक तो भी होगा, परंतु जब तक मिथ्यात्व में है तब तक क्या है उसकी बात बता रहे हैं। हाँ, अभी जो तीर्थंकर की सत्ता वाला है दूसरे तीसरे नरक में है, तीर्थंकर की सत्ता है तो तीर्थंकर प्रकृति भी वहां बांधते कभी, तो वो तो अभी मनुष्य होगा, क्षायिक प्राप्त करेगा और मोक्ष जाएगा उसी भव में, अब उसके लिए अधिक भव नहीं होंगे। हाँ, सत्ता में जो बंधी है वो सत्ता में रहती है, बंदी हुई सत्ता में रहना है, उदय की बात नहीं है, बंद हुआ है पूर्व में और अभी सत्ता में पड़ी है। हम देखते हैं ना, सातवें नरक का नारकी हो और उसकी सत्ता में आहारग्रीक पड़ी हो, ऐसा भी हो सकता है, उसका अर्थ क्या, वो पड़ी है वो क्या बता रहे, वो पूर्व कभी अवस्था में, पूर्व अवस्था में कभी मुनि भी हुए थे और आहारग्रीक का बंद भी किया था, बाद में वो छुड़ गया सारा ही संयम भी छूट गया, मुनिपना भी छूट गया।
सत्ता में यानी आपने पैसे कमाए हैं और आपकी तिजोरी में है, जो कमाए नहीं है वो कहाँ से रहेंगे, वैसे जो बंधे हुए कर्म है वो सत्ता में अभी उदय में नहीं आ रहे जब तक वो सत्ता में है। ख्याल में
हाँ परिणामों की हाँ, और ये कर्मों की तरफ देखकर वो कह सकते हैं ना, अरे ये जीव ने ऐसे पूर्व में ऐसी अवस्था धारण की थी। अब ये साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, वो समुद्र के या अन्य अन्य ऐसे जो पाषाण होते हैं ना जियोलॉजिस्ट, उसको एग्जाम करते हैं तो उसमें इम्प्रेशंस आते हैं, पहले पहले क्या हुआ था, पहले कभी वो भूकंप हुआ था या अभी ये सुनामी जैसे हो गया, प्रलय जैसा, तो ये सारे उसमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं और वो रह जाते हैं बाद में, तो उसको देखकर बाद में कहते यहाँ ये बात हुई थी, तो उसका वो काल भी निकालते ना, इतने लाख वर्ष पहले ये हुआ था, इतने लाख वर्ष पूर्व ये हुआ था, ये कहाँ से निकालते, तो उसमें वो इम्प्रेशंस रह जाते हैं कुछ। वैसे यहाँ भी वो कर्मों की तरफ देख कर ये हाँ ये सत्ता में है, उसका अर्थ क्या है, सत्ता में तो बंधे बिना कहाँ से आई सत्ता में, तो इसने बांधी थी तो बांध कर इमीडिएट अगले भाव में तो कोई नरक में नहीं जा सकता, मुनि हो तो मुनि हो तो वो सम्यक तो के साथ मरा हो तो स्वर्ग में गया होगा, मिथ्या तो में आकर भी फिर भी वो तो हर हाँ हो सकता है कि मुनि हुआ था फिर मिथ्या तो में गया फिर नरकायु बांधी, एनीथिंग इज पॉसिबल। एक सौ अड़तालीस की सत्ता एट अ टाइम नहीं हो सकती, एक जीव के एट अ टाइम नहीं, अलग अलग जीवों की अपेक्षा हो सकती, नाना जीवों की अपेक्षा, तीर्थंकर की हो सकती है और आहारक की भी अन्य किसी को हो सकती है, परंतु एक ही जीव को एट अ टाइम तीर्थंकर की भी सत्ता और आहारक की भी हो ऐसा नहीं हो सकता, ख्याल है ना, अलग किसी जीव को हो सकता है कि मिथ्यात्व गुण स्थान में आहारक की सत्ता है और किसी अन्य जीव को तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता है, तो नाना जीवों की अपेक्षा हम गिनते हैं तो हम कहेंगे उसकी सत्ता है, परंतु एट ए टाइम किसी एक जीव को दो तीर्थंकर की भी सत्ता है और आहारक द्वीप की भी सत्ता, ऐसा नहीं हो सकता। देखो यहाँ प्रथम दंडक से मिथ्यात्वादी 16 प्रकृतियों को ध्यान में रखकर अभी बात आई थी ना दूसरे दंड की बात, देखो यहाँ अभी हमने 53 सूत्र के नीचे 104 पृष्ठ पर नीचे के पैराग्राफ में चौथी लाइन देखी थी अंत में, द्वितीय दंडक में तिर्यक गति प्राज्ञान पूर्वी नीच गोत्र वगैरह वगैरह, तो द्वितीय दंडक यानी दूसरे गुणस्थान में विच्छित्ति होने वाली वो द्वितीय दंडक की प्रकृति, प्रथम दंडक यानी मिथ्यात्व गुणस्थान में विच्छित्ति होने वाली, जो 16 प्रकृतियों होती है ना सामान्य से बात है उसको कहते प्रथम दंडक, और दूसरे गुणस्थान की 25 उसको कहेंगे द्वितीय दंडक। द्वितीय दंडक से दूसरे गुणस्थान तक बंधने वाली प्रकृतियों का ग्रहण है, अब अगला सूत्र 54 नंबर का, चौथी पंचमी छठी पुढ़वी एवं चेवन एदवम नवरी विशेषो तिथयरम नथी, चतुर्थ पंचम और छठी पृथ्वी में इसी प्रकार जानना चाहिए, विशेषता केवल यह है कि इन पृथ्वियों में तीर्थंकर प्रकृति नहीं है। शंका, तीर्थंकर प्रकृति का बंध यहाँ क्यों नहीं होता, इस शंका के होने पर उत्तर देते हैं कि जिस प्रकार तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाले सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व को प्राप्त होकर तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ द्वितीय व तृतीय पृथ्वियों में उत्पन्न होते हैं, यह कहीं पहला नहीं लिखा क्योंकि पहले में उत्पन्न होने वाले सम्यक्त्व के साथ जाएंगे मिथ्यात्व के साथ में, वैसे इन पृथ्वियों में उत्पन्न नहीं होते, इसी कारण से ही मनुष्य गति और मनुष्य गत्यानुपूर्वी को मिथ्या दृष्टि सांतर बांधते हैं, इन नरकों में प्रथमादि तीन पृथ्वियों की अपेक्षा कोई भेद नहीं है। तीर्थंकर प्रकृतियों के बारे में उस वहाँ उसकी सत्ता नहीं पाई जाती, एक भेद है। बांधेगा ही नहीं तीर्थंकर प्रकृति वाला, वो बांधेगा ही नहीं। क्या कहा देखो, इसी कारण से अब यहाँ बात किसकी चल रही है, चौथे पांचवे और छठे गुणस्थान के। हाँ ख्याल है ना, तो वे तिरंज गति को भी बांधते, मनुष्य गति को भी बांधते। अब सात्विक की बात करेंगे। सत्तम आय पुढ़वीय नेरैया पंच नानावर्णीय छ दंसनावर्णीय सादा साद बारस कसाय पुरी सवेद हस्य रदि अरदि शोक भय दुगुंछा पंचिंद्य जादि ओरालिय तेजा कम्मय शरीर समचौरस संठान ओरालिय शरीर अंगोवंग वज्जरिस संगड़न वर्ण गंध रस फांस अगुरुव लहु उवघात परघात उत्साह पसत्य विहाय गई तस बादर पज्जत पत्ते शरीर थिर अथिर सुह असुह सुभग दुस्सर आदेज जसकित्ति अजसकित्ति निमिण पंचंतरायिनम को बंधो को अबंधो। इतनी सारी सी प्रत्यय अमित सातवें पृथ्वी के बारे में चल रही बात। तो इन सारी प्रकृतियों को कौन बांधता है और कौन उसका अबंधक है, यह सूत्र सुगम है। मिच्छा इट्ठी पौड़ी जाव असंजत सम्माद इट्ठी बंधा एदे बंधा अबंधा नथी। मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत हो हिंदी नहीं पढ़ा, 105 पृष्ठ पर वो हिंदी का अर्थ शुरू होता है 55 नंबर के सूत्र का। सातवीं पृथ्वी के नारकियों में पांच ज्ञानावर्णीय छह दर्शनावर्णीय साता और असाता वेदनीय बारह कषाय पुरुष वेद हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा पंचेंद्रिय जाति औदारिक तेजस्व कारमान शरीर समचतुरस्र संस्थान औदारिक शरीर अंगोपांग वज्रर्षभ सहनन वर्ण गंध रस स्पर्श अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास प्रशस्त विहाय गति त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ सुभग सुस्वर आदेय यशकीर्ति अयशकीर्ति निर्माण और पांच अंतराय, इनका कौन बंधक और कौन अबंधक है, यह सूत्र सुगम है। इन सबको इकट्ठा लिया है तो चारों ही गुणस्थानों में बंध होता है ऐसा कहेंगे। मिच्छा इट्ठी पौड़ी जाव असंजत सम्माद इट्ठी बंधा एदे बंधा अबंधा नथी। मिथ्या दृष्टि से लेकर असंयत समय दृष्टि तक बंध है चाहिए, का बंधक है। बंधक है चाहिए बंधक है बंधक शब्द डालना हाँ बंधक है, ये बंधक है अबंधक नहीं है। अभी इसका अर्थ कल करना पड़ेगा क्योंकि वो आधा ही छोड़ना पड़ेगा। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नवो सदा देतो अश्विन भाई।